हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा
ओम शांति। एक सूफी फकीर होता है, उसके पास एक बंजारा सेवाधारी करके आता है। तो इस सूफी फकीर की यह बंजारा बहुत सेवा करता है और सेवा के फल स्वरूप एक दिन यह फकीर उसे एक गधा इनाम में देता है। और ये जो व्यक्ति होता है बंजारा, अब गधे को लेकर चल देता है। जो भी उसका कार्य होता है, अब गधा उसमें उसकी मदद करता है। जो बोझ वो खुद उठाता था, अब वो बोझ गधा उठाता है। तो बहुत इस बंजारे की यह गधा सेवा करता है। सेवा करते करते गधा बूढ़ा हो जाता है और एक दिन मर जाता है। बंजारा जो होता है उसे गधे से बहुत प्यार भी हो जाता है। सोचता है क्यों ना इसकी एक कब्र बनाऊं, क्योंकि बहुत सेवा की है, सारी उम्र जीवन पर्यंत सेवा की है, तो उसकी कब्र बनाऊं। तो जब उसकी कब्र बनाने लगता है और मिट्टी डालने लगता है, सोचते हैं अच्छी कब्र बनाऊं, थोड़ी बड़ी, थोड़ी शानदार भी हो। तो जब कब्र तैयार हो जाती है और थोड़ी मिट्टी डालते रहता है, तो सामने से एक राहगीर गुजरता है, श्रद्धा से उसके हाथ जुड़ जाते हैं। सोचता है कि शायद कोई बहुत ही पहुंचा हुआ महात्मा होगा, तो थोड़े पत्थर पैसे फेंकता है वहां पर कब्र पर। ये जो आदमी होता है बंजारा, उसको थोड़ी हंसी तो आती है, परंतु सोचता है अगर कुछ बोला तो इसकी जो श्रद्धा है उसे ठेस पहुंचेगी, क्योंकि ये बंजारा मिट्टी डालते हुए रोता भी रहता है। तो उस दिन उस आदमी को देखकर फिर कई लोग भी पैसे डालने लगते हैं, तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है। दूसरे दिन भी वैसा ही, तीसरे दिन भी वैसा ही, फिर तो ये रोज होने लगता है। सोचता है ये गधे ने जीवन भर तो मेरी बहुत सेवा की, मरने के बाद भी बहुत अच्छी मेरी सेवा कर रही है। और एक दिन वो बहुत रईस बन जाता है और कार्य एक ही है, सुबह से जाओ रोना चालू करो और लोग आते आते कब्र पर पैसे डालना चालू। एक दिन उस गांव में वही फकीर आता है जिसने उसे ये गधा दिया होता है। तो फकीर को गांव वाले कहते हैं कि गांव में आए हो, उस कब्र पर जरूर जाना, बहुत पहुंचे हुए महात्मा की ये कब्र है, कोई साधा व्यक्ति नहीं था वो, क्योंकि बहुत नाम है। तो यहां आए हो तो वहां से जरूर जाना। तो फकीर कब्र के पास आता है और उस बंजारे को देखता है तो पहचान लेता है। वो बंजारा भी उसे पहचान लेता है और कहता है कि मैं वही हूं जिसने आपकी सेवा की थी और आपने मुझे ये गधा दिया था। अब मैंने ये बात आज तक किसी से कही नहीं, पर आपसे क्या छुपाना, आप ही ने गधा दिया था, तो आपको कह देता हूं ये वही गधा था। वो कहता है कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, हमारे गांव में तो इससे भी बड़ा एक कब्र है, वो जो महात्मा की खबर है वो इससे भी बड़ा महात्मा है। ऐसे ही एक महात्मा की कब्र हमारे गांव में भी है, जो तो इससे भी कई गुना अधिक प्रसिद्ध है। जो भी हमारे गांव में आता है उस कब्र के पास आता ही है। और वो पता है कौन है, बोलता है नहीं, वो कहता है वो इसी गधे की मां थी। संसार में परंपराएं, रूढ़िवाद, अंधविश्वास चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आज की मुरली में महावाक्य है, यथार्थ क्या और यादगार क्या। क्यों कर रहे हैं पता नहीं। भारत वर्ष में जितने त्योहार है, जितने पर्व है, उतने विश्व भर में और कहीं नहीं है। परंतु उनका रहस्य क्या है, वो किस चीज की यादगार है, वो क्यों मनाए जाते हैं और किस तरह मनाए जाते हैं, इसका किसी को कोई पता नहीं है। वो राज, वो रहस्य उद्घाटन केवल इस संगम युग पर ही होता है और स्वयं ऑलमाइटी ऑथॉरिटी ही इन गोपनीय तथ्यों को खोल सकते हैं। ऐसा ही एक दूसरी एक कहानी है। यूके में मनोवैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया था। उस रिसर्च में 8 बंदरों को लिया गया। उन 8 बंदरों को एक कमरे में रखा गया। कमरे के बीच में एक सीढ़ी और सीढ़ी के ऊपर केले। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केले की ओर जाने लगता है कि ठंडा पानी बाकी सारे बंदरों पर डाला जाता है। तो क्या हो गया कि जैसे ही कोई बंदर चढ़े, इतना जबरदस्त ठंडा पानी डाला गया जाता था सब बंदरों पर कि सारे बंदर मिलकर जो बंदर चढ़ रहा है उसको पकड़कर नीचे लाते थे और बहुत पीटते थे। तो इस तरह की वहां की दिनचर्या थी। फिर वहां के जो रिसर्च करने वाले थे उन्होंने एक नया बंदर डाला और पुराने बंदर को बाहर निकाला। नया जो बंदर आया उसने सोचा कि इतने अच्छे केले पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, कोई बोलता भी नहीं। वो सोचता है क्यों ना मैं जला जाऊं, और वो चढ़ता है और जैसे ही केले को टच करता है सारे बंदर उस पर भिड़ जाते हैं, उसको नीचे लाते और बहुत पिटाई करते हैं उसके, क्योंकि सब पर ठंडे पानी की बौछार होती है। तो वो चुप बैठ जाता है। फिर दूसरा बंदर, एक सेकेंड बंदर को रिप्लेस किया जाता है, एक दूसरा नया बंदर को डाला जाता है। वो नया बंदर भी सोचता है इतने अच्छे केले पर कोई खाता भी नहीं उसे, तो वो चढ़ के खाने लगता है। तो अभी जो पहला बंदर जो रिप्लेस होकर आया था, जिसे पता भी नहीं कि उसे क्यों मारा गया था, अब वो भी उसकी ओर लपकता है और उसको मारने के लिए पकड़कर। उसे ये पता नहीं क्यों, वो तो नया नया आया था। धीरे धीरे सारे ही बंदर रिप्लेस हो जाते। अभी 8 नए बंदर है। अभी पानी भी नहीं डाला जाता, केले वैसे ही है, पर कोई भी बंदर केलों के तरफ आंख भी नहीं उठाकर देखता। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो भी धर्म है, रिलीजन्स है, ट्रेडिशंस है, संस्कृति है, संसार में जो भी विश्वास है, इसी तथ्य पर आधारित है। क्यों हो रहे हैं, किसने चालू किए, कब चालू किए, उसकी सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या है, ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता। सब कर रहे हैं, इसके लिए हम भी कर रहे हैं, यह मानसिकता वहां आ जाती है। तो आज की मुरली बाबा किस रूप में आया है? मनुष्य के रूप में आया है। बाबा मनुष्य के रूप में आया है। पॉलीएंथ्रोमॉर्फिज्म कहा जाता है उसे। मनुष्य के रूप में भगवान को मनुष्य बना देना, इस पर एक क्लास है डेनिस बेन जी का। तो बाबा आज किस रूप में आया है? बेगमपुर के बादशाह के रूप में आया है। और किसके रूप में आया? विश्व के मालिक के रूप में आया है। और किसके रूप में आया है? गोपी वल्लभ के रूप में आया है। और क्या करने आया है? होली खेलने आया है, होली मनाने आया है, होली की मुबारक देने आया है। पर किसको? सभी को होली की मुबारक नहीं, जिन्होंने क्या कर दिया उनको होली की मुबारक देने आया है। जो बाप के हो गए, 13 वर्ष पूरे हुए, 13 हूं की धुन में जो है, किसकी धुन में है, 13 हूं की धुन में जो है उनसे मिलने आया है। बाप का हूं इस श्रेष्ठ संकल्प में जो है, वरदान में है आज, उनसे मिलने आया है। किनसे मिलने आया है, जो थे पहले बालक और अब क्या बन गए हैं, मालिक। किसके मालिक, विश्व के मालिक। किसके मालिक बन गए, त्रिलोक के मालिक, त्रिलोकी के मालिक। बेगमपुर मूल वतन, बेगमपुर संगम युग और बेगमपुर सतयुग स्वर्ग, तीनों के ही जो मालिक बन गए, जो थे पहले बालक, ऐसे बच्चों को, ऐसे मालिकों को मिलने कौन सा मालिक आया है, बेगमपुर का बादशाह आया है, होली मनाने आया है, होली के राज समझाने आया है। होली क्यों मनाई जाती है, ये होली के क्या क्या यादगार है, होली के क्या क्या रहस्य है, सच्ची होली किसे कहते हैं, यह बताने आया है। कब आया है, कितने साल हो गए आकर उसको, नहीं ये मुरली कब आया है, 13 साल हो गए ये मुरली को। पैंतीस साल, 81 की मुरली है। तो बेगमपुर का बादशाह, बालक सो मालिक, बच्चों को मिलने आया है और होली की मुबारक दे रहा है। किन बच्चों को होली की मुबारक दे रहा है, जो बाप के हो गए, जिन्होंने क्या कर दिया, और पास्ट को क्या कर दिया, पास्ट को पास्ट कर दिया, बीती को बीती कर दिया, जिन्होंने अतीत को समाप्त कर दिया, जो वर्तमान में जी रहे हैं, जिनका ये नया जन्म है, जिनका नवजन्म हुआ है, ऐसे मरजीवा जो बच्चे हैं, उनको मिलने बाप आया है, उन्हीं को होली की मुबारक दे रहा है, बाकियों को नहीं। बाबा ने कहा है, प्रश्न भी पूछा है, होली हो गए, होली के कितने सारे भिन्न भिन्न अर्थ बाबा बता रहे हैं। कुछ अर्थ शाब्दिक अर्थ है, उसमें से एक है हो लिए, हो गए। बाबा ने कहा यही तुम गीत गाते हो, कौन सा गीत गाते हो, बाप के हो गए, ये तुम गीत गाते हो, पहले जलाते हो फिर मनाते हो, एक दिन जलाना एक दिन मनाना, एक दिन जलाना एक दिन गीत गाना, खुशी में नाचना, खाना पीना नाचना गाना मौज करना, परंतु एक शब्द भूलना नहीं, कौन सा, अविनाशी और निरंतर। संगम युग को, युग में सभी ब्राह्मणों को बहलाने के लिए बाप दादा वरदान देते हैं, कौन सा, अविनाशी भव। तो इस मुरली में बाबा ने एक वरदान दिया है, एक वरदान संगम युग को दिया हुआ है और एक मंत्र फूका है कानों में ब्राह्मणों के। तो वरदान है अविनाशी भव का, किसके लिए अविनाशी, खुश रहने में अविनाशी। नाचो गाओ, कैसे नाचो, बुद्धि से खुशी का नाच, कैसे नाचो, अव्यक्त वतनवासी बन, फरिश्ते की ड्रेस पहन। स्थूल नाचना नहीं है, यहां पर स्थूल कुछ भी नहीं है, बाबा ने कहा ना, ये उस होली के रंग की मुबारक नहीं है, ये उस होली के रंग की मुबारक बाबा दे नहीं रहे हैं। ये नाचना पैरों का नहीं है, ये नाचना मन का है, ये नाचना बुद्धि का है, ये नाचना खुशी का है। तो ऐसा नाच, अव्यक्त वतनवासी बन, फरिश्तों की नाच, फरिश्तों की ड्रेस पहन, निरंतर नाचते रहो, अविनाशी हो जाए ये नाचना, ऐसा बाबा चाहते हैं। उस होली में क्या किया जाता है और इस होली में बाबा क्या कराते हैं? पहले तो उस होली में क्या किया जाता है वो बताओ। वहां पर रंग लगा जाता है, उस रंग से क्या हो जाता है? कपड़े खराब होते हैं, सूरत बिगड़ जाती है, और क्या होता है? पैसा बर्बाद हो जाता है, और क्या होता है? झगड़े। जितनी कैजुअल्टी इमरजेंसी रूम में जितनी कैजुअल्टीज होली के दिन आती है रंग पंचमी, उतनी और कभी नहीं आती है। लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा उसी दिन होता है, और क्या होता है उस दिन? चेहरे पर जलन। 2007 दिल्ली में बहुत सारे जो रंग जो इस्तेमाल किए गए थे, पहले जमाने में नैसर्गिक रंग थे, अभी जो रंग है वो रासायनिक है, उसमें स्किन इरिटेशन और कईयों की आंखें पर बुरा असर हुआ था। 2007-2005 दिल्ली में बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था, बहुत बड़ी रिसर्च हुई उसके बाद में। इसके लिए कई लोग उन रासायनिक रंगों को छोड़कर जो प्राकृतिक रंग है उसकी ओर चल रहे हैं अभी। तो और उस रंग में क्या होता है? एक तो रंग, दूसरा झगड़े, तीसरा और क्या होता है? पैसे बर्बाद, और वाटर पोल्यूशन। उसमें जो डाई, जो पिगमेंट यूज किया जाता है, उससे वाटर पोल्यूशन, प्रदूषण होता है। और होली से क्या होता है? समुन्दर में डाला जाता है सारा प्रदूषण, वो सारा समुन्दर जल प्रदूषण जिसको कहते हैं, और सारा समुन्दर में फेंक दिया जाता है पिगमेंट्स। संबंधों में करवाट, वो एक दूसरा पॉइंट है, पर ये भी राइट है। उसमें और एक पॉइंट जोड़ा है, पहले हम एनवायरमेंट के बारे में सोचेंगे, फिर मनुष्य के संबंधों में जाएंगे। एनवायरमेंट में और एक महत्वपूर्ण बात होती है, वो कौन सी? डीफॉरेस्टेशन, जंगल तोड़, जिसको कहा जाता है जंगल तोड़, डीफॉरेस्टेशन। जो आंकड़े निकाले गए, 30,000 से ज्यादा होलिका दहन जो हो जाता है, एक एक होलिका दहन में कम से कम 100 किलो लकड़े, वो जो वुड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, और बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो एनवायरमेंटल बहुत सारा, जो निसर्ग में भी बहुत कुछ होली की वजह से संसार में होता है। और क्या? संबंधों में कड़वाहट कैसी? लड़ाई झगड़ी होती, झगड़े होते हैं इसके लिए। अच्छा ठीक है। तो नशा करते हैं, नशीले पदार्थ, नशे में ही बहुत सारे अपराध होते हैं नशे की हालत में, और साउंड पोल्यूशन, और भिन्न भिन्न भारत में होली का त्योहार एक एक राज्य में अलग अलग रीति से मनाया जाता है। वहां ब्रिज का की होली अलग, वहां मथुरा और वृंदावन में 15-15 दिन चलती है होली। वहां पर कई जगह वो पत्नियां अपने पति को लाठी से, डंडे से लात मार होली होती है ना एक, वो फिर अपने को बचाते हैं ढाल से। अलग अलग प्रकार की होली है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी, महाराष्ट्र में वो भी होता है गोविंदा, देखा है ना? तो बहुत सारा कुछ होता है। हर राज्य की होली अलग अलग है, हर राज्य के होली का नाम भी अलग अलग है। कहीं धुलेंडी तो कहीं पर धूली वंदन, तो कहीं रंग पंचमी, कहीं दुलेटी, अलग 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 नाम है भारत में ही। और जो भारत के बाहर भी, जहां अल्पसंख्यक हिंदू है, वहां पर भी बहुत अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो ये संसार की होली, बाबा बता रहे हैं कौन सी होली? रूहानी रंग में रंगने वाली होली। ज्ञान के राज क्या है होली में, वो बाबा राज बता रहे हैं। तो वहां पर ये जो रंग है यहां का, वो रंग कैसा है? यहां का रंग कैसा है? यहां का रंग कैसा है आज की मुरली से? श्रेष्ठ रंग है और प्रिय रंग है। वहां पर तो सब कुछ बिगड़ जाता है, यहां पर जिसको तुम ये रंग लगाते हो वो क्या कहते हैं? और लगाओ, सदा लगाओ। क्या कहते हैं? और लगाओ और सदा लगाओ, क्योंकि जब तुम और लगाते हो, जब तुम सदा लगाते हो, तो वो मनुष्य से परिवर्तन हो, देवता बन जाते हैं। ऐसी ये होली है। वहां पर पिचकारी है, यहां पर भी पिचकारी है। वहां पर एक एक पिचकारी में अलग अलग रंग और अलग अलग धाराएं हैं, यहां पर भी एक एक पिचकारी में अलग अलग धाराएं हैं। आज बाबा ने चार पिचकारियों का वर्णन किया है। सबसे पहली कौन सी है? खुशी की पिचकारी। दूसरी पिचकारी है प्राप्तियों की पिचकारी, और तीसरी पिचकारी है शक्तियों की पिचकारी, और चौथी पिचकारी है ज्ञान की पिचकारी। ऐसी ये चार पिचकारी, और पांचवी पिचकारी गुणों की पिचकारी। ज्ञान गुण, गुण तो चाहिए ना, गुणों की भी पिचकारी। तो सबसे पहली पिचकारी है खुशी की पिचकारी। इस खुशी की पिचकारी में चार धाराएं हैं। कौन सी धाराएं हैं उसमें? खुशी की पिचकारी में चार धाराएं हैं। पहली धारा, एक एक धारा एक एक समान है। एक एक धारा जब किसी को लगती है तो वो भी रंग में रंग जाता है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, आज के वरदान में है। समर्थ संकल्प जो करते हो वो बीज है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं बाबा का हूं, ये समर्थ संकल्प है। इस समर्थ संकल्प पर में जब टिकते हो तो कौन सा नशे का अनुभव होता है? माया जीत और विजयी। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, खुशी के पिचकारी की धारा नंबर वन। धारा नंबर दो, धारा नंबर दो विठल भाई, धारा नंबर दो, धारा नंबर दो विश्व का जो मालिक है उसका बालक, ये धारा नंबर दो। धारा नंबर तीन, ऊंचते ऊंच बाप के श्रेष्ठ मंच में पार्ट बजाने वाली हीरो एक्टर या हीरो पार्टधारी को। चौथी धारा, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेजफुल आत्मा हूं। चार धाराएं बाबा ने बताई है। चार धाराएं अर्थात चार समान, चार धाराएं अर्थात चार श्रेष्ठ संकल्प, चार श्रेष्ठ संकल्प जो कि व्यर्थ को समाप्त करेंगे। इसकी फ्रीडम है यहां पर। आगे बाबा ने एक जगह कहा है, फ्रीडम बनाते हो ना यहां पर, तो ये फ्रीडम है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, जहान का नूर हूं, इस जगत का आधार हूं, अपने श्रेष्ठ समान में रहना, ये धारा है, खुशी की धारा है। यही खुशी को लाएगा, क्योंकि संसार की आत्माओं के पास संकल्प ही नहीं है, दुखों के संकल्प है। बाबा ने कहा ना आज, दुख की छाया, दुख का अहंकार, दुख का अनुभव, दुख सुख के साधन भी दुख के साधन अनुभव हो रहे हैं। संसार की हालत कैसी है? सुख के साधन भी दुख के साधन अनुभव हो रहे हैं। चारों ओर दुख का हाहाकार है, सारे देश में अंधकार छाया हुआ है, घटाटोप अंधकार। सुख की एक झलक भी दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी संसार की हालत है। इतना दुख है और इतना ही व्यर्थ भी है वहां पर। ऐसे दुखों में खुशी की पिचकारी हमारे हाथ में है, और उसका एक धारा, उसकी एक, उसका एक संकल्प, उसका एक समान कितना ऊंचा है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। विश्व का जो मालिक है, संसार का जो नियंता है, जो सृष्टि करता है, उसका बालक हूं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाली आत्मा हूं, नॉलेजफुल आत्मा हूं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। जो हमने जाना है, जो हमने पाया है इस संसार में, आज तक किसी ने नहीं पाया। चौथा, ऊंचे ते ऊंचे बाप उसके साथ पाठ बजाने वाली हो, कहां पर? इस श्रेष्ठ मंच पर, जब हमारी जीवन कहानी लिखी जाएगी, तो उसमें किसका नाम होगा? जीवन के उस मोड़ पर कौन मिल गया साथी? महान आत्माएं अपनी जीवन कहानी लिखते हैं या उनकी जीवन कहानी दूसरे लिखते हैं? तो जब हमारी लिखी जाएगी तो हमारी किताब में किसका वर्णन होगा कि इनके साथ इस तारीख को, इस समय स्वयं भगवान इनका साथी बन गया। अब इनके आगे की जो जीवन है, अब तक जो था जीवन वो दूसरा था, अब आगे का जीवन भगवान के साथ इनका जीवन है। ऐसी हम महान आत्माएं हैं। तो खुशी की पिचकारी, दूसरी है प्राप्तियों की पिचकारी। प्राप्तियां तो बहुत है, बार 7 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा है ना, प्राप्तियों की लिस्ट निकालो। प्राप्तियां, दिव्य प्राप्तियां है तुम्हें, तुम्हारे पास। यहां 2 प्राप्तियों का वर्णन आज बाबा ने किया है। एक तो अति इंद्रिय सुख, हिंदी शब्दकोश में अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ दिया हुआ है वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बगैर प्राप्त किया जाता है। वो हमारा जो सुख है वो इंद्रियों का सुख नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं है, सेंसेस का सुख नहीं है, परंतु इन इंद्रियों से परे चेतना का जो सुख है वह हमारा सुख है। उस सुख को हमने पाया है जो सुपर सेंशियस हैप्पीनेस और ब्लिस कहा जाता है जिसे, वो हमारी दिव्य प्राप्ति है। एक दूसरी आज की मुरली से पढ़ी है मुरली, पहले तो वो लोग हाथ खड़ा करो जिन्होंने मुरली पढ़ी है। सुनी नहीं, पढ़ी। जिन्होंने 2 बार पढ़ी है वो अब हाथ खड़ा करो। अब जिन्होंने 3 बार पढ़ी है वो हाथ खड़ा करो। तो दूसरी प्राप्ति कौन सी है? मिलन की प्राप्ति या रूहानी प्रेम की प्राप्ति? आत्मा परमात्मा के मिलन की, के रूहानी प्रेम की प्राप्ति। तो ये मिलन, ये रूहानी प्रेम, भगवान का प्यार प्राप्त हो जाना कितनी बड़ी प्राप्ति है। भक्तों को प्राप्त नहीं है, वो भगवान से प्रेम करते हैं, परंतु परमात्मा जिनसे प्रेम करता है, भगवान के मुख पर बार बार जिनका नाम आते रहता है, ये प्राप्ति नहीं है तो और क्या है? तो ये 2 प्राप्तियों का गायन बाबा ने आज किया है। तीसरी पिचकारी कौन सी है? शक्तियों की पिचकारी। इसके लिए क्या कहा बाबा ने? कि कुछ कहा ही नहीं, कहा है वरदान में, कहा ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये संकल्प है, ये श्रेष्ठ संकल्प है, ये बीज है, इससे ही विजयी और मायाजीत बनोगे। तो शक्तियों की प्राप्ति है। उसके बाद कौन सी पिचकारी है? चौथी ज्ञान की पिचकारी, ज्ञान के गुह्य पॉइंट्स। हमारे पास ज्ञान की पिचकारी है, इस पिचकारी से हम जिसे चाहे उसे, जब चाहे तब ज्ञानी बना सकते हैं, रंग में रंग सकते हैं। तो इन 4 पिचकारियों का बाबा ने आज वर्णन किया है। गोपी वल्लभ की हम सब कौन है? गोप गोपियाए। तो एक दिन होली नहीं मनाते हैं बाबा, कितने दिन मनाते हैं? रोज। हर दिन क्या है यहां पर? होली डे, हर दिन होली डे है। अवकाश सतयुग में होगा हॉलीडे, छुट्टी वहां होगी, यहां क्या है बाबा ने कहा? होली डे, हर दिन। हर दिन हमारा कितना श्रेष्ठ है, हर दिन पवित्र बनने का ये युग है। होली का एक अर्थ पवित्रता भी है, जो आज की मुरली में बाबा ने नहीं कहा, परंतु वरदान में फिर भी कह दिया। होली का जो एक अर्थ है पवित्र बनना, एक होली के 2 शाब्दिक अर्थ जो बाबा कहते हैं, एक तो पवित्र बनना और दूसरा हो जाना, बन जाना, केवल एक के बन जाना। जब एक के बन गए तो कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा उसका स्थान नहीं ले सकता, टॉम डिक एंड हैरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, केवल एक वही। उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। इंग्लिश में किसी ने कहा है, इफ यू गिव टू गॉड सेकेंड प्लेस इन लाइफ, यू गिव हिम नो प्लेस। अगर आप परमात्मा को अपने जीवन में दूसरे स्थान पर रखते हो तो उसे कोई भी स्थान नहीं देते हो। बाबा को कौन सा स्थान पसंद है? मुझे कहां रखो? दिल तख्त पर रखो। मास्टर सर्वशक्तिवान कौन है? जिन्होंने बाप को अपने दिल तख्त पर रखा है, दिलाराम को, वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये बाबा ने परिभाषा दी है। तो दूसरा अर्थ था हो गए, और पहला अर्थ है पवित्रता, जिसके लिए बाबा ने स्लोगन में क्या कहा आज, ब्राह्मण सच्चे कौन है? चेहरे से और सूरत से, प्यूरिटी और रॉयल्टी का अनुभव, कि प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव। और सच्चे ब्राह्मण कौन है संतोष भाई, आज की मुरली से दूसरी परिभाषा सच्चे ब्राह्मण की, जो याद और सेवा में सदा तत्पर है। जल और नीर, नीर और मछली। तो हॉलिडे के बारे में बात चल रही थी। हॉलिडे अर्थात कौन सा हॉलिडे? हर दिन यहां पर होलीडे है, परंतु जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत किसका अनुभव कराते हैं? मोहब्बत का या हॉलिडे का। संगम युग पर जो मेहनत है वही क्या है? हॉलिडे भी है। मोहब्बत तो है ही, वो मोहब्बत ही हॉलिडे का अनुभव कराता है। जैसे वो बताया ना, तीन मजदूर कहीं काम करते रहते हैं, एक विदेश का व्यक्ति आता है और उनको पूछता है पहले मजदूर से, जो बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुखी हो के पत्थर तोड़ रहा है, बड़े बड़े पत्थर है तोड़ रहा है, उसको पूछता है क्या कर रहे हो? वो कहते देखते नहीं हो क्या, आंखें नहीं है क्या, क्या कर रहा हूं, इतना बड़ा बड़ा पत्थर को तोड़ रहा हूं और क्या कर रहा हूं, काम क्या है, बस यही काम करना पड़ता है, फिर भी कुछ मिलता नहीं है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही पीड़ित है, पता नहीं भगवान ने हमको ऐसा क्यों बना दिया, ये ऐसा ही काम क्यों नहीं दिया, लोग तो कितने मजे से आराम से रहते हैं और मेरे ही माते ये क्यों ऐसा काम दे दिया, बहुत ही दुखी है। वो विदेशी दूसरे मजदूर से पूछता हूं तुम क्या कर रहे हो, वो थोड़ा सा संतुष्ट है, कहता है पत्थर तोड़ रहा हूं, आजीविका कमा रहा हूं, क्योंकि घर को संभालना पड़ता है, पत्नी को बच्चों को संभालना पड़ता है, इसके लिए आजीविका कमा रहा हूं, मेरा समय बर्बाद नहीं करो, वैसे भी अभी 5 बजने वाला है, मेरे जाने का समय हो गया है, उसे जाने की जल्दी है, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत संतुष्ट है। तीसरे व्यक्ति से पूछता है तुम क्या कर रहे हो, वो बहुत ही खुशी खुशी में पत्थर तोड़ रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, और जैसे पूछते हैं उससे तो आकाश की तरफ देखता है, धन्यवाद का भाव उसके चित्त में भर जाता है, कहता है मैं भगवान के लिए मंदिर निर्माण कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। ये कहानी भारत में भी सुनाई जाती है, विदेश में भी सुनाई जाती है, जब विदेश में सुनाई जाती है तो कहते हैं चर्च, भारत में मंदिर, प्रसिद्ध कहानी है काफी। कहानी को समझाने वाले समझाते हैं, द पर्पस ऑफ द वर्क मॉडिफाइज द एटीट्यूड, कार्य का उद्देश्य क्या है वो हमारी जो वृत्ति है उसको परिवर्तन करता है, कार्य का जो पर्पस है क्यों किया जा रहा है, वो जो भाव है वो जितना श्रेष्ठ होगा, यज्ञ है, यज्ञ सेवा है, हमारी सेवा है, हमारा काम है। बाबा ने दृश्य देखा ना ऊपर से, कौन सा दृश्य देखा, कौन पत्थर उठा रहे थे, कौन पत्थर उठा रहे थे, कितना आश्चर्यजनक दृश्य है, जिनकी भक्त मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, भक्त जिनकी मंदिरों में पूजा कर रहे हैं वह पत्थर उठा रहे हैं, प्रकृति भी जिनकी दासी है वह पत्थर उठा रहे हैं, स्वयं भगवान इस सृष्टि का नियंता, इस वसुंधरा का मालिक, जिनकी माला सुमिरन करते हैं वह पत्थर उठा रहे हैं, कितना बड़ा आश्चर्य लगा होगा। तो बाबा ने यह अद्भुत सा दृश्य देखा, कितनी खुशी हुई होगी उसको। और क्या भाव है? यज्ञ सेवा है, हमारा कार्य है, घर का कार्य है। यह श्रेष्ठ भाव है। जिन्होंने पत्थर उठाए, एक एक पत्थर हजार गुना वृद्धि को प्राप्त होकर क्या बन गए? सोचो, एक भाई पत्थर उठा रहा है, अब सोचो उस पत्थर से हजार गुना हीरे मोती बन गए। दृश्य लाओ, विजुअलाइजेशन होता है ना, पत्थर से हीरे मोती बन गए। अब हीरे मोती उड़े और कहां गए? महल में। और भाई क्या कर रहा है? नहीं, महल में क्या कर रहा है? महल में बैठा है। महल बनाने नहीं पड़ेंगे, बाबा ने कहा। बने बनाए या सजे सजाए? बने बनाए भी और सजे सजाए भी। नहीं, सजे सजाए, क्योंकि साकार मूल्यों में आया है, तुम्हें ही बनाने पड़ेंगे। तो सजावट, जो जो इस यज्ञ की थोड़ी भी सेवा करेगा, परंतु दिल से करेगा, अपना समझकर करेगा, ऊपर ऊपर की नहीं, दिखावे वाली नहीं, झूठ झूठ नहीं, ऊपर से केवल हाथ फिराने वाली नहीं। जो झूठ झूठ करेगा, बाप भी ऊपर से झूठा झूठा हाथ फिरा देगा। फिर जो दिल से करेगा, ये सौदा दिल का है। और जो नहीं करेगा, मुझ गॉड का, गवर्नमेंट में राइट हैंड, कल की मुरली याद है ना, मुझ गॉड के गवर्नमेंट का राइट हैंड धर्मराज है, याद रखना। तो उसके यज्ञ की जिसने भी जो भी सेवा की है, उन्हें पदम गुना मिल जाएगा, परंतु दिल से करे। जिस स्थान पर हम आए हैं, यहां पर सेवा करना और सेवा केंद्रों पर सेवा करना, इसमें भी बहुत अंतर है। परंतु दिल साफ, सच्ची, श्रेष्ठ भाव, विश्व कल्याण का भाव हो, साधारण सेवा परंतु स्थिति श्रेष्ठ हो, तो भगवान भी खुश हो गए बच्चों को पत्थर उठाते हुए देखकर, और उन्हें वरदान भी दे दिया। आगे मुरली, होली मनाना अर्थात, एक है जलाना, एक दिन जलाना, दूसरे दिन मनाना। तो एक दिन जला देना, जलाना अर्थात जो कुछ पुराना है, पास्ट, उसको समाप्त करना। सुबह भी चर्चा चालू थी हमारी कि पास्ट में ही जीते हैं या तो भविष्य में जीते हैं। जीना कहाँ है? वर्तमान में। अभी यहां बैठे हैं, बस बुद्धि यही हो, बुद्धि इधर उधर ना जाए। पास्ट की यादें उसे खींचती है। यादें तो कहीं जाएगी नहीं, परंतु यादें, कहते हैं आत्मा और मस्तिष्क, एक होती है जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं साइकोलॉजिकल मेमोरीज। वो मेमोरीज जैसे इम्प्रिंट है ब्रेन पर, मस्तिष्क पर, वो जाती नहीं है। परंतु दो कंपार्टमेंट अगर कर दिए, एक स्टोर रूम और एक लिविंग रूम, वो स्टोर रूम में है, हम जाकर उनको खींचकर बाहर ना लाए, वो रहेगी पड़ी, एक दिन नष्ट हो जाएगी। उनको स्मरण करना, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो कि पास्ट हो चुका है, जो भोग विलास भोगे है पास्ट में, अब उनका स्मरण करने से क्या, वो तो देह के थे, वो वहीं समाप्त हो चुके हैं। उनके स्मरण से आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी। आत्मा को जीना है वर्तमान में। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी, इस पल में ही सब कुछ समाया हुआ है, वर्तमान में। जो हो गया वो हो गया, फुल स्टॉप। जो हो गया, अब उसका कोई चिंतन नहीं, वो पड़ा रहने दो अंदर। हमें रहना है केवल लिविंग रूम में, स्टोर रूम में जाके नहीं रहना। वहां रहोगे तो पागल होने की संभावना बहुत ज्यादा है, केवल इस जन्म का नहीं है, वहां जन्म जन्मांतर का माल वहां पर है। अवचेतन की परतों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, सबकॉन्शियस के लेयर्स के अंदर। इसके लिए बाबा कह रहे हैं, पास्ट इज पास्ट, ये कर दिया और बाप के हो गए। दो स्टेप्स है, पहले जलाना फिर मनाना। जिन्होंने जलाया ही नहीं वो मना भी नहीं सकते, जिन्होंने जलाया भी नहीं वो सदा खुश नहीं रह सकते। कोई ना कोई दुख आएगा, दुख के छींटे, दुख की छाया, दुख की परछाई, दुख के बादल, दुख का प्रभाव, दुख की आंधी, दुख के धुआं, कुछ ना कुछ तो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। जलाया नहीं है, संपूर्ण जला देना है। वो रहे तो रहे, पर उसको जला दिए, हम अपनी तरफ से पूरा जला दे, जा जाकर उसको याद नहीं करना है। उसके लिए निरंतर बुद्धि में ज्ञान के होने की आवश्यकता है, बिना ज्ञान के उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। बुद्धि में निरंतर ज्ञान हो, आकंठ भरा हुआ ज्ञान, इतना भर जाए कि वो अब स्वतः ही निकलने लगे, स्वस्फुरन से निकलने लगे, इतना ज्ञान को बुद्धि में भर दो और परमात्मा प्रेम को। आगे आगे बाबा क्या कह रहे हैं, यादगार को याद किया बाबा ने, दो यादगार, क्या कहते हैं, स्वांग, एक स्वांग को याद किया जो मुखौटा पहनते हैं देवी देवताओं का, और यहां पर क्या दिखाते हैं, लाइट। तो जब तुम्हारी ज्योति यहां जगती है, जब मस्तिष्क पर प्रकाश यहां चमकता है, आत्मा चमकती है, उसी का यादगार वो लोग बनाते, ये तुम्हारा ही अनुभव है। यहीं बाबा ने कहा यथार्थ क्या और यादगार क्या, एक दूसरा भी यादगार बताए, वो तो जबरदस्त है। देखा है किसी ने वो यादगार, किसने किसने देखा है, महामूर्खों की सम्मेलन बहुत जगह होता है, महामूर्ख सम्मेलन, एक मूर्ख दिवस भी होता है, एक मूर्ख दिवस, फिर महामूर्ख सम्मेलन, जिसमें व्यंग कविताएं होती है बहुत सारी, हास्य कविता, हास्य रस होता है उसमें, एक एक कवि आकर अपनी कविताएं वहां पर सुनाता है, इस तरह के हास्य उसमें, एक राजा और एक रानी, एक दूल्हा दुल्हन ऐसे बनते हैं, और जो दुल्हन होती है वो पुरुष बनता है, दूल्हा जो होता है वो स्त्री होती है, वो बनते हैं, ये उसकी विशेषता होती है, महामूर्ख सम्मेलन। तो बाबा ने कहा ये किसका यादगार है, जो बाप को नहीं जानते, अब जानंती माम मुड़ा, गीता में है, जब मैं आता हूं मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, अब जानंती, वो मुझे जानते नहीं है, दे डू नॉट नो मी, और मेरा परिहास करते, उपहास करते, निंदा करते, हंसते हैं मुझ पर। आप कहते हो बाप आया है, वो कहते हैं हो नहीं सकता, बाप कहते हैं मुझे जानो, वो कहते हैं बाप है ही नहीं। नास्तिक, नास्तिकवाद संसार में बहुत फैला हुआ है, नास्तिकवाद। बहुत समय पहले, 100-150 वर्ष पहले विदेश में एक विचारक हुआ था, फ्रेडरिच नीट्शे, जिसने घोषणा उस समय कर दी थी, जो कि संपूर्ण क्राइस्ट का विरोधी था, एंटी क्रिश्चियन, उसने घोषणा की थी परमात्मा मर चुका है, गॉड इज डेड। वो समय था विज्ञान के बाल्यावस्था का, क्योंकि विज्ञान की जो जो खोजें हो रही थी सब क्रिश्चियनिटी के विरोध में जा रही थी, उसने अपने जीवन में अंतिम सांस तक विरोध किया, इतना विरोध किया क्राइस्ट का कि धीरे धीरे वो अपने सिग्नेचर भी एंटी क्राइस्ट लिखने लगा, इतना उसके सबकॉन्शियस में वो चला गया। तो संसार नास्तिकता से भरा हुआ है, परंतु उस नास्तिकता में भी आस्तिकता कहीं ना कहीं छिपी हुई है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जो संपूर्ण नास्तिक है, कहीं ना कहीं चेतना में परमात्मा प्रेम छिपा हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि ये भी तुम्हारा ही यादगार है, बाप को न जानना, बाप को न समझना, ये महामूर्ख का, अब उनको क्या कहेंगे जिन्होंने बाप को जाना, समझा, माना, बाप के बन गए, परंतु वो नहीं किया जो उसने कहा। अब उसमें कितने महा जोड़ने पड़ेंगे, कितने महा जोड़ने पड़ेंगे। बाबा ने उनके लिए महान कहा, महामूर्ख कहा, जो बाप को नहीं जानते। अब जिन्होंने जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, न्योछावर कर दिया, और उसके बाद भी संसार खींच रहा है, संसार की आसक्ति, वासनाएं, यादें, भोग, विलासिता का वो जीवन, त्याग और तपस्या जीवन में नहीं आई है, परम वैराग्य का आविर्भाव नहीं हुआ है हृदय में, उनको क्या कहा जाएगा। जितने महान जोड़ने हैं जोड़ दो, महा महान, महा जोड़ो या महान जोड़ो, जो भी जोड़ने हैं जोड़ो। तो यहां बाबा ने और भी कहा कि सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, अभी मिलना मनाना, मिलना और मनाना है। तेरा हूँ इसी धुन में रहने के लिए बाबा ने कहा और फिर खुशी की बात की और यहाँ पर इस मुरली को समाप्त किया। उसके बाद में पार्टियों से बाबा मिले, कहाँ कहाँ मिले बाबा, भारतवासियों से भी मिले, तो अफ्रीका से भी मिले, तो अमेरिका से मिले और सेंट फ्रांसिस्को, ये चार ग्रुप से बाबा मिले। वो हम तो श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाना है, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, जो चार धाराएं बताई है, एक एक मिनट के लिए उन एक एक करके चार धाराओं में स्थित होना। पहला ग्रुप अमेरिका, क्या कहा बाबा ने, एक एक रत्न अलोक अनोक अनेकों के कल्याण के निमित्त है। और बाबा ने कुछ भविष्य की तरफ, भविष्य के कुछ सीन दिखाए हैं यहाँ पर। कौन से सीन, जो हमने कहा पहले भी कि दुख का अनुभव होगा आत्माओं को, चारों तरफ हाहाकार होगा दुख का, दुख बढ़ेगा, सुख की जरा भी झलक कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। ऐसे समय में साधन भी दुख का अनुभव कराएंगे, ऐसे समय में केवल बाप और बाप के बच्चे सहारा अनुभव करेंगी आत्माएं। क्या बन जाएंगे, लाइट हाउस, सारे देश में अंधकार और आप क्या बन जाओगे, लाइट हाउस। इसके लिए बाबा ने यहाँ होमवर्क दिया है, कौन सा, लाइट और माइट फैलाने का अभ्यास करो एक, और दूसरा एक ही समय में तीन प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा में उनको बिठाकर आथत देना ये तो है ही, परंतु एक ही समय पर तीन प्रकार की सेवाएं करने के लिए कहा है। तो यहाँ बाबा ने कुछ होमवर्क दिया है, शॉर्ट में हम पूरा करेंगे। आगे का ग्रुप कौन सा है, सेंट फ्रांसिस्को, जिसमें बाबा ने कहा वहां पर सबसे ज्यादा कौन है, धर्म नेताएं है। धर्म नेताएं क्या बन जाए, तुम्हारे मैसेंजर बन जाए। धर्म नेताओं को क्या करो, तीर लगाओ, बाण। जो गायन है किसका, कुमारियों का, तो ब्रह्मा कुमार क्या करे और ब्रह्मा कुमारी क्या करे, ब्रह्मा कुमारी कुमार क्या करे, शिकार को पकड़ के लाए, और ब्रह्मा कुमारी क्या करे, तीर चलाए। ब्रह्मा कुमारी क्या करे, झंडा बुलंद करे। ब्रह्मा कुमारी क्या करे, मर्जीवा बनाए, अपना बनाए, ये सब काम करे। तो उसी का यादगार फिर उधर शास्त्रों में जो दिखाए, अंबा अंबा अंबिका अंबालिका श्रीखंडी और पितामह भीष्म, जो यादगार दिखाया है महारथियों को बान मारे, तो यहाँ का यादगार है। परंतु कैसे, उनको ये नहीं कहो कि तुम गलत हो। उदाहरण कौन सा दिया, चूहे का, पहले फूको और फिर मारो, तो उनको महान महान कहते क्या बना दो, अपनी महानता दिखाओ, महान महान कहते अपनी महानता दिखाओ। कितनी अच्छी युक्ति बाबा ने कहा है, अच्छे से अच्छा कहो तो अच्छे से अच्छा बन जाएंगे। वो माइक है, बड़े है, तो उनको निमित्त बनाओ। और भी बहुत कुछ कहा है कि ऐसा कोई फंक्शन रखो कि उनको बड़े पोजीशन में उसको बुलाओ, और ऐसे परिवार से मिलाओ उनको फिर, ताकि उनको लगे कि ब्रह्मा कुमारी या क्या करती है, उनको भी अनुभव हो जाए। तो ये सारी बाबा प्रूफ चाहते हैं वो। तो ये सारी बातें बाबा ने किन के लिए कही, धर्म नेताओं की सेवा के लिए कही है। और लास्ट और तीसरा जो ग्रुप है वो कौन सा है, भोले दादी को करेंगे याद। पहले हम अभी अफ्रीका ग्रुप में आते हैं, तो अफ्रीका के लिए बाबा ने क्या, सेवाओं के लिए कहा। अफ्रीका के लिए क्या कहा, सेवाओं का उमंग बहुत है। ब्राह्मण अर्थात किसका उदाहरण दिया, मछली और नीर का। जैसे कि मछली का संसार क्या होता है, पानी ही संसार होता है। मछली को अगर पूछा जाओ, बताओ क्या ये सागर क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, तो कहेगी यही जो है वो दिख रहा है, वो मेरा जीवन है। पर उसको कहा कि नहीं, वर्णन करके बताओ, तो क्या कहेगी, क्या वर्णन करें, जो दिख रहा है बस वही है, वर्णन क्या करूं मैं, जो है वही जीवन है, अगर इससे बाहर हूं तो जीवन नहीं है। तो ब्राह्मण अर्थात जो सदा याद और सेवा में तत्पर, सेवा नहीं तो जीवन ही नहीं, ऐसा सेवा हमारे रग रग में समा जाए कि दिन रात यही संकल्प हो कि किसकी जाकर सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, क्या क्या करूं। अभी भगवान के पास बैठकर योग में ये ना कहो कि बाबा आप हमारा ये कर दो, अभी ये नहीं कहना है बाबा से आप हमारा ये काम कर दो, इसको ज्ञान में लाओ, उसको ज्ञान में लाओ, पति को लाओ, बच्चों को लाओ, पोते को लाओ, अब बाबा से मांगना नहीं, अभी ये कहो कि आपके लिए अब हम क्या करें, अब आपकी कौन सी सेवा रह गई है वो बताओ तो हम कर दे। इतने स्वयं को तत्पर सज्ज आमादा कर दो। तो ये ब्राह्मणों की बाबा ने परिभाषा दी है। और एक यहां पर अफ्रीका को एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा, मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र, किसको फॉलो करो, एक बाप को, क्योंकि वही एक रस है, उसको फॉलो करेंगे तो एक रस होंगे, भाई और बहन, टॉम डिक एंड हैरी, और किसी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि उनमें अच्छाई दिखेगी तो कमी भी दिखेगी, इसके लिए एक को ही फॉलो करनी है। यज्ञ का शुरुआत से जो नियम है, एक को ही फॉलो करना है, फॉलो करना, अनुकरण, अनुसरण, अनुगमन, तीनों शब्द उसमें आ जाते हैं। तो यहां फॉलो करने की बात बाबा ने की है। और लास्ट वाला जो ग्रुप है भारत, भारत वालों ने क्या किया, भगवान को अपना बनाया और विदेशियों को बना बनाया भगवान, रेडीमेड गॉड बना बनाया भगवान प्रस्तुत किया। मेहनत इन्होंने की, जिन्होंने सहन किया, इन्होंने यहां प्रत्यक्ष किया, फिर उनको दिया, यहां जाना तब तो उन्होंने जाना ना। तो जैसे दुकान का उदाहरण दिया, पहले दुकान छोटा, ठेली, ठेला, या क्या कहेगा बाबा ने आज अच्छा शब्द, रेडी, रेडी या पटरी, उस पे रहता है, फिर बड़ा होता है। तो ये भी पहले छोटा था, मेहनत की, सहन किया, प्रत्यक्ष यहां किया, यहां पहचाना, फिर उनको रेडीमेड ऑन द प्लेटर, थाली में, उधर उनको दिया परोस के तो काम भारत वालों ने किया। परंतु संगम युग को वरदान है हरेक की विशेषता, वो भी लास्ट सो फास्ट है, परंतु जो आदि में है वो आदि में है ही है, वो आदि में ही रहेंगे। हरेक की विशेषता, एक दो में विशेष है, एक दो में विशेष है, एक दो की विशेषता, ये बात यहां बाबा ने कही। और फिर याद किया, क्या कहा भोले दादी के लिए, ऐसा मत समझना जो भाषण दे रहे हैं वो ही बड़े महान है, यहां भाषण देने से कोई मतलब नहीं है, यहां भाव क्या है। बुद्ध को किसी ने कहा था कि तुमने अपने जैसे कितने बुद्ध बना लिए, वो कहता है बहुत है, परंतु अंतर केवल है, वो कह नहीं सकते मैं कहता हूं, बाकी वो मेरे से महान ही है सब और मेरे से शायद आगे भी होगी। तो यहां बाबा ने कहा अगर वो भी ना हो तो काम नहीं चलेगा, हरेक का महत्व है इस यज्ञ में। ऐसा कोई नहीं सोच सकता कि ये सेवा ज्यादा बड़ी है और ये सेवा कम, चाहे हजारों लाखों के सामने भाषण करने की सेवा हो या झाड़ू मारने की सेवा हो, भाग्य उतना ही है, परंतु उसमें अहंकार आ सकता है भाषण वाली सेवा में, उसमें तो फिर और ही नुकसान है, और ही घाटा है, और ही माइनस हो जाएगा। सेवा की और बाबा ने कहा वर्णन किया तो मार्क्स कट, मम्मा दो तीन मास बैंगलोर रहकर आई, और किसी ने पूछा सेवा कैसी थी, मम्मा ने उत्तर दिया अच्छी थी फुल स्टॉप। जो दूसरा भाई था उसने बताया क्या क्या बड़ी बड़ी सेवाएं हुई है, सेवाएं तो हो रही है परंतु पता है सेवा परमात्मा करा रहा है, हमारा कुछ नहीं है, इसके लिए हम केवल निमित्त मात्र है। जैसे वो नल, नल भव, सुदेश बहन उस दिन कह रही थी ना, नल जो होता है ऊपर पानी है टंकी में, बीच में नल, नीचे पीने वाला है। अभी नल को अगर अहंकार आ जाए कि मैं पानी ला रहा हूं, तुमने क्या किया, पानी तो ऊपर है, तुम तो केवल एक चैनल मात्र हो, निमित्त मात्र। भगवान चाहे तो किसी को भी निमित्त बना सकता है। उस दिन हम बता रहे थे मोहम्मद रफी को किसी ने बहुत तारीफ उसकी कर रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर खुदा चाहता तो मेरे जैसी आवाज किसी और को भी दे सकता था, पर उसने मुझे दिया, तो तो इसमें मेरी कोई महानता नहीं है कि मेरी आवाज इतनी अच्छी है। ये आवाज खुदा किसी और को भी दे सकता था, ये तो मैं नतमस्तक हूं उसके आगे, नतनयन हूं कि उसने ये आवाज मेरे कंठ में भर दी। ये तो किसी भगवान को अपना कार्य कराना है तो किसी के थ्रू करा सकता है, पर जिन आत्माओं को वो निमित्त बनाता है वो फिर वो भाग्यवान भी है। तो हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं सभी महान कार्य है, सभी इस यज्ञ का कार्य मेरा कार्य है, यज्ञ का कार्य हमारे बाप का कार्य है, इस श्रेष्ठ भाव से उसे करना है। तो चाहे कोई भी सेवा हो, भाषण देने की सेवा हो या झाड़ू मारने की सेवा हो, वही आनंद उसमें आ जाए, वह श्रेष्ठता है, वह मानता है। अच्छा, ऐसे होली सो होली कर, होली के गीत गाने वाले बच्चों को ऐसे बेगमपुर के मालिकों को, ऐसे ब्राह्मण सो देवता बनने वाले बच्चों को, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न पिचकारी से आत्मा की चोली रंगने वाले बच्चों को, ऐसे बाप से मंगल मिलन मनाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति।